ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। तो आज के इस 22 जुलाई के प्रभात जागृति में, विशेष प्रभात जागृति में आप सबका स्वागत है और सबका बहुत धन्यवाद भी है जो लोग जप करने के लिए आए। आप लोग ने जप किया ना आके यहाँ पर? हरे कृष्णा, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। क्योंकि कलयुग में हम नहीं तपस्या कर सकते हैं, ना कोई त्याग कर सकते हैं, ना संन्यास ले सकते हैं, ना वन में जाकर रह सकते हैं विरक्त होकर। हम सुनते हैं ना, 60,000 साल तपस्या किया विश्वामित्र मुनि ने, फिर वशिष्ठ मुनि ने भी हजारों साल तपस्या करके ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त किया। बाय द वे सब लोग गृहस्थ थे, हाँ, ये फैमिली मेम्बर्स थे। फैमिली मेंबर होते हुए भी उन्होंने इतना साल तप किया भगवान की प्राप्ति के लिए। क्या मेरी ये हिम्मत हो सकती है आप में से किसी को बोलने की कि अभी चलो जंगल जाएंगे और 10 साल तपस्या करेंगे सबको छोड़कर? नहीं कर सकते। ऐसा समय आ गया है कि हम लोग ना तपस्या कर सकते हैं, ना कुछ त्याग कर सकते हैं। पैसा छोड़ना तो नामुमकिन चीज़ है, सब लोग पैसे के लिए जान भी ले लेते किसी की। इतना पैसा जो है वो जीवन का केंद्र स्थान बन गया है। हमको भी सोचना चाहिए कि क्या पैसे पर हम निर्भर हैं कि पैसा हमारे पर निर्भर है? क्या पैसा हमारी ज़रूरत है कि पैसा हमारी ज़िंदगी का मकसद है? ये सोचना चाहिए बहुत। क्या हम पैसे के लिए जी रहे हैं कि पैसा हमारे जीवन चलाने के लिए आवश्यक है? ये सोचना बहुत ज़रूरी है। हम लोग भक्त हैं, जप करते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में हमारे मन में ये रहता है कि पैसा मिलना चाहिए, पैसा होना चाहिए, और उसको जस्टिफिकेशन भी देते हैं कि पैसा ज़रूरी है, भक्ति करने के लिए पैसा आवश्यक है। ये सोच के फिर केंद्र स्थान जो अपने पैसे को बनाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उसको त्याग नहीं कर सकते। किसी को बोलेंगे अभी एकादशी का व्रत करो, आषाढ़ी एकादशी है, बहुत बड़ी एकादशी, अच्छा दिन है, आपको बहुत लाभ होगा उसका। तो बोलेंगे क्या क्या खाने को मिलेगा? बोले साबुदाना खिचड़ी मिलेगी, कुट्टू को आटा के लड्डू मिलेगा, फ्रूट सलाद मिलेगा, श्रीखंड मिलेगा, बासुंदी मिलेगी। हाँ ठीक है, फिर करेंगे। दिन में कितनी बार मिलेगा? 4-5 बार तो मिल जाएगा, डोंट वरी। कितना मुश्किल है किस चीज़ को व्रत रखना, कोई उपवास करना। और किसी लड़की को बोलेंगे कि आपको अच्छा पति चाहिए तो 16 शुक्रवार करो, तो बहुत ज़ोर से करेगी वो, प्रेम से, क्योंकि वो खुद के लिए होता है ना, खुद के लिए कुछ चाहिए होता है। दूसरे के लिए हम कोई कष्ट नहीं उठाना चाहते, खुद के लिए हम कष्ट उठाने को कितना भी करने को तैयार, क्योंकि स्वार्थ हमारे जीवन का प्रधान अंग हो गया है। खुद के लिए कुछ भी, तो किसी की हम परवाह नहीं करते, इतना हमारे जीवन में स्वार्थ प्रधान हो गया है। उसी स्वार्थ का एक रूप है पैसा। तो मैं सब इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब हम नहीं कर सकते हैं तो फिर कलयुग में भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? लोगों को बोलेंगे कि चलो तीर्थ यात्रा चलो। मुझे पता है, हर बार का अनुभव है, मैं 10 साल से 12 साल की यात्रा निकालता हूँ। फिर अस्पताल के लोगों को यात्रा में आने लाने के लिए कितनी बार मुझे विनती करनी पड़ती है, आ जाओ आ जाओ, आपके लिए यात्रा बनाई है। आप बोलेंगे चलो पिकनिक चलेंगे माथेरान, धमाल करेंगे वहाँ पर, सब लोग तुरंत इकट्ठा हो जाते हैं। बीच में किधर कोंकण में गए थे, कितने लोग गए थे घूमने के लिए, उनको स्पिरिचुअल कुछ नहीं चाहिए, बट टेंशन मत देना। लेकिन अगर बोलेंगे भगवान के धाम में चलना है, भगवान की लीलाओं की स्तरियों को भेंट करेंगे, उधर कथा सुनेंगे, प्रसाद पाएंगे, दर्शन करेंगे, बहुत सोचते हैं कि दिसंबर की इतनी कीमती मेरी रजा जो है मैं यहाँ क्यों डालूँ। मैंने ऑलरेडी कई प्लान बना के रखा है। मैं जब बोलता हूँ माता जी आप आइए यात्रा में, तो कभी है, तो जब मैं बोलता हूँ डेट, तो उनके चेहरे में ऐसा डिस्चार्ज हो जाता है चेहरा, क्योंकि ऑलरेडी उस दिन में कुछ पिकनिक का प्लान बना के रखा है, धमाल करने का। तो ये कुछ भी नहीं हो सकता है। तो फिर जीवन का जो उद्देश्य है हमारा कि इस जीवन में हमको भगवान को प्राप्त करना है, वो कैसे पूरा होगा? इतने सारे कर्म इकट्ठा करेंगे, इसमें सारे कर्मों का फल फिर भोगना है, दोबारा आना होगा, कैसे पूरा होगा सब कुछ? इसलिए भगवान ने फिर कहा है कि हम लोग इतने क्या कहें अपने बारे में, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। चलो आप एकदम सिंपल काम देते हैं आपको, आप अपने मेरा नाम ले लो, भगवान का नाम ले लो, जहाँ रहे वहीं रहो, जो परिवार में है वहीं रहो, जो पढ़ रहे हो पढ़ो, जिस देश में रह रहे हो वहीं रहो, जो खाना खा रहे हो खाओ, किसी की हत्या करके मत खाओ बस, बाकी शाकाहारी खाना बहुत रखा है वो खाओ, और मेरा नाम लो, ज़्यादा तकलीफ उठाने की ज़रूरत नहीं। जहाँ पर भी हो, जो भी कर रहे हो करते रहो, मेरे नाम को ऐड करो, कुछ सबको छोड़ना नहीं है, आपको ऐड करना है बस भगवान के नाम को। और वो भी लोगों को लेने को कष्ट है, बंद करो उसे, क्योंकि जब कंधे पर बहुत सारे पाप होते हैं तो वो मुख से भगवान का नाम नहीं निकलता है। जब तक पाप निवृत्ति नहीं होती है तब तक भगवान का नाम मुंह से निकलना इतना आसान काम नहीं है। आप सब लोग बड़े भाग्यवान लोग हो, क्योंकि आप इस जगह पर पढ़ने के बहाने या इलाज करने के बहाने या नौकरी करने के बहाने आए हो, जिस जगह पर भगवान का नाम का कीर्तन चलते रहता है, इस जगह पर पहुंच पाना उसके लिए भी बहुत पुराने जन्मों की पुण्य की आवश्यकता होती है। श्रीमद् भागवत, अगर आपको भगवद गीता और श्रीमद् भागवत आपके कान पर पढ़ना चाहिए, तो उसके लिए भी आपको पुराने जन्म के पुण्य कर्म होने चाहिए, तभी आपको ये भगवान की वाणी सुनाई पड़ेगी। ऐसा कोई सस्ती चीज़ नहीं है ये। कितने में मिलेगी? 10 में, 5 में देंगे क्या? वो वस्तु नहीं है, ये दिव्य वस्तु है। इसलिए मैंने आपको धन्यवाद किया, क्योंकि ये बहुत दुर्लभ है। जवान लड़के लड़कियाँ अगर बैठकर, चलो नौकरी के बहाने, पढ़ाई के बहाने, स्कूल के बहाने अगर बैठकर, नियम है हमारा प्रार्थना का, नियम है हमारा विशेष प्रभा जागृति का, किसी ना किसी बहाने अगर बैठकर जप कर रहे हैं वो भगवान के नाम का, ये बहुत बड़ी दिव्य चीज़ है। आप लोग नौकरी के बहाने आपके संस्था में कार्यक्रम में आपको आना है, आ रहे हैं और जप कर रहे हैं भगवान के नाम का, ये बहुत बहुत पावन और पुण्यवान चीज़ है। ये हमारे जीवन के सारे कर्म बंधनों को, पाप बंधनों को तोड़ डालती है। जब हम लोग डॉक्टर हमको वो देते हैं ना एनेस्थीसिया, बेहोश करते हैं ना ऑपरेशन के पहले, उसके बाद में क्या करते हैं हमको कुछ समझता नहीं है, हम तो ऐसे बेहोश पड़े हुए हैं, पता नहीं कौन से गंदगी निकाल के फेंक देते हैं, कौन से जोड़ देते हैं, कौन सा ठीक कर देते हैं, कुछ समझता नहीं हमको। अगर होश में करते तो आप तड़पते, रोते, चिल्लाते, आक्रोश करते, लेकिन वही चीज़ बेहोश करके आराम से की जा रही है, वो भी शांत, आपकी शांत, आपका जो काम है वो भी हो रहा है। उसी तरह से भगवान का नाम एक ऐसा ऑपरेशन है जो आपके अंदर हो रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा है कि कितने कितने जन्मों के पाप नष्ट हो रहे हैं, कितने कितने कष्टों को आप कैंसिल कर रहे हैं आगे आने वाले, हमको पता नहीं एक्चुअली इसका महात्म्य क्या है। हम लोग इतना आलस्य करते हैं उसको, लोगों को बोलना पड़ता है, अरे बोलो बोलो बोलो, अभी यहाँ झगड़ा हो जाए तो किसी को बोलना पड़ेगा क्या? जोर से बोलो और जोर से बंद झगड़ा करो, बोलना पड़ेगा क्या? अपने आप मैक्सिमम वॉल्यूम है ना, 10 नंबर का वॉल्यूम पे वो झगड़ा करेगा, और उसकी इच्छा होगी कि 15 वॉल्यूम होता तो कितना अच्छा होता, मेरा वॉल्यूम इतना कम क्यों है, मैं और ज़ोर से बोलना चाहता हूँ, मेरा गला आज क्यों बैठा हुआ है, मेरे को चिल्लाना है उसके ऊपर, तो बोलना पड़ता है किसी को, ट्रेन में कोई पाँव पे पाँव दिया तो। लेकिन भगवान का नाम के लिए वो इधर से निकलता ही नहीं है, पता है कितना अत्याचार हो रहा है, मुझे भगवान का नाम कहने को बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं मुझे ऐसा करने के लिए, इसी को दुर्भाग्य कहते हैं। दुर्भाग्य यानी जो सबसे भाग्यवान चीज़ है उसको लेने के लिए आदमी तैयार नहीं है, उसको मूड नहीं लेने का, उसको दुर्भाग्य कहते हैं। अगर बोला 1 करोड़ रुपया तीसरे माले पर रखा है, आपको खाली लिफ्ट छोड़कर पैदल जाना है उधर, तो आपको 1 करोड़ मिल जाएगा। अब लगे पैदल जाना है क्या, लिफ्ट अगर मिलेगी तो अच्छा रहेगा सर, लिफ्ट खोल दो ना, 3 माला कौन चढ़ेगा, अरे 1 करोड़ रुपया उधर, नहीं सर थोड़ा लिफ्ट खोल दो ना प्लीज। इसको दुर्भाग्य कहते हैं। तो ये दुर्भाग्य को हटाने के लिए भगवान ने अपना नाम दिया है, दुष्कर्मों को हटाने के लिए भगवान का नाम दिया है। और कितनी बार आएंगे हम लोग इस दुनिया में जन्म लेने के लिए, और कितनी बार जन्म लेकर तड़पेंगे यहाँ पर, कितनी बार जन्म लेकर बुरे पुराने पुराने कर्मों का फल भोगते रहेंगे, और पूछेंगे ऐसा भगवान ने मेरे साथ क्यों किया, मैं ही क्यों, और कोई नहीं था क्या, इतना साल से जप कर रहा हूँ, जप कर रही हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों होना चाहिए। लेकिन हम भूल रहे हैं कि हमको जब मौका मिला यहाँ पर आना ही नहीं है, दुख भोगने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हमने ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर, वो टाइम नहीं मिला मुझे, तो फिर आना पड़ा, आना आने के बाद दुख भोगना पड़ा, फिर तड़पना पड़ा, आक्रोश करना पड़ा, क्या कर सकते हैं उसके लिए। इसलिए आप लोग बड़े भाग्यवान हो, बार बार कह रहा हूँ मैं, आप भगवान का नाम लो, पढ़ाई तो आप कर ही रहो, नौकरी कर ही रहो सब लोग, यहाँ नहीं तो और कहीं करेंगे, है ना, वो तो करना ही है, थोड़ी छोड़ मुक्त हो जाएंगे। अगर ये संस्था बंद हो जाएगी तो आपको कहीं और नौकरी तो करना ही पड़ेगा आपको। लेकिन अगर हमारी नौकरी, हमारा व्यवसाय अगर हमको कृष्ण भावना वाले जगह पर करने का मौका मिलता है, उससे बड़े भाग्य की बात इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर हमने इतने अच्छे कर्म नहीं किए फिर भी आपको ऐसा भाग्य दिया जा रहा है फ्री में, किसी भी प्रकार से हो, आप योग्य हो या आपको भगवान ने योग्य बना दिया है और कृपा किया है, मिल तो रहा है आपको, अमूल्य वस्तु जो है वो मिल रही है आपको, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। और इसी नाम को प्रचार करने के लिए संत लोग दुनिया में आते हैं, समझाने के लिए, थोड़ा आगे आ जाओ। इसी नाम को और उसकी महिमा को लोगों तक पहुंचाने के लिए संत लोग आते हैं, जैसे तुकाराम महाराज ऐसे कहते कि देवता लोग बोल रहे थे कि अरे अभी दुनिया में इतना कष्ट हो रहा है, भगवान आप अवतार ले लो, अभी इतना लोग तकलीफ भोग रहे हैं। बोले मेरे अवतार का शेड्यूल नहीं है, अभी आप में से किसी को जाना होगा, ऐसे देवताओं को बोल रहे थे, तो कोई देवता जाने को तैयार नहीं है। पता है क्यों, कलयुग में कौन जाएगा नीचे, कलयुग जैसे भयंकर अवस्था में कौन जाएगा नीचे। समझो आपको बोलेंगे कि अभी ऐसी जगह आपको जाना है जहाँ पर गटर खुला पड़ा है, सब टट्टी पेशाब फैला हुआ है, वहाँ पर आपको कुछ काम करना है, कौन जाएगा आप में से, तो सब लोग इधर देखेंगे, मुझे नहीं जाना है, है ना। इस तरह से वो लोग सोच रहे हैं देवता लोग कि ये दुनिया में जहाँ पर ये लोग इतने पापी है, इतने आलसी है, इतने कम जीवन वाले हैं, इतने दुर्गुण वाले हैं, जल्दी मरने वाले हैं, कोई सद्गुण नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, स्वार्थी है, कपटी है, पाप करते रहते हैं, हमको नहीं जाना है उस जगह पर। भगवान को फिर अभी चॉइस दिया भगवान ने किसको जाना है, तो कोई तैयार नहीं हुआ, तो भगवान ने कहा तुकाराम आप जाओगे, फिर तुकाराम आए और जन्म लिया उन्होंने पृथ्वी में। और हमारे जैसे घर गृहस्थ को संभालते हुए सब लोगों को भगवान का नाम का बोध दिया उन्होंने, इतना सुंदर भाषा में, सरल भाषा में, गरीब से गरीब लोगों के लिए समझ में आ जाए, इस तरह से उसी भगवत गीता को ओवी रूप में प्रकट किया, उसी सत्य को, उसी महान सत्य को उन्होंने सुंदर सुंदर कविता में प्रकट किया। तभी लोग वो दलन डल रहे हैं ना, वो चक्की पीस रहे हैं तभी भी कर सकते हैं उसको, जब पानी भर रहे हैं तभी भी कर सकते हैं, जब भैंस को धो रहे हैं तभी, दूध निकाल रहे हैं तभी भी बोल सकते हैं, जब खेती कर रहे हैं, धान बो रहे हैं खेती में तभी भी बोल सकते हैं, खाना बनाते हुए कोई त्रुटि निकल रहा है, मतलब क्या किया कि आम आदमी को, सिंपल से सिंपल आदमी को, सिंपल से सिंपल काम करते हुए भी जो चीज़ कर सकते हैं वो उन्होंने आसान करके आपको दिया। जीवन के बड़े बड़े सत्य जो हैं वो एकदम सिंपल भाषा में आपको समझाइए। और उन्होंने कहा है कि भगवान के नाम के बड़ी भेंट इस दुनिया में कोई नहीं है, फिर भी हम लोग इतने कंजूस हैं लेने में, देने में तो कंजूस होता ही आदमी, लेकिन जब भगवान कुछ बड़ी संपत्ति बांट रहे हैं लेने में भी हम लोग कंजूस हैं, उसमें भी हमको आलस्य नहीं है और उत्साह नहीं है, उसमें भी हम आलसी हैं। तो और बताइए इसके आगे भगवान क्या कर सकते हैं? खुद भी आते हैं, संतों को भेजते हैं, जिनको जहाँ पर आने की इच्छा नहीं उनको भी वहाँ भेजते हैं, जाते हैं लोग, खुद लोगों की निंदा सहन करते हैं, दुष्ट लोग उन पर षड्यंत्र मचाते हैं, उनकी हिंसा क्या कहते हैं उसको, द्वेष करते हैं उनका, उनको कष्ट देते हैं। कितने संतों को कितना कष्ट हो गया है, लेकिन फिर भी अपना काम नहीं छोड़ते वो, क्योंकि वो बहुत हृदय में प्रेम और करुणा को लेकर आते हैं। ऐसे तुकाराम महाराज थे, तो भगवान के बड़े विशेष भक्त थे वो। उन्होंने भगवान, उनके लिए भगवान ने कितनी बार दर्शन दिया उनको, कितनी बार संकट से तार दिया उनको। वो रोज हर साल देहू के देहू से हर एकादशी को, ऐसा नहीं कि आषाढ़ एकादशी को, हर एकादशी को वो देहू से पंढरपुर चल के जाते थे। एक बार जब गए तब इतना अच्छा लगा कि बोला अभी मैं रह नहीं पाऊंगा, मुझे हर एकादशी में जाऊंगा। तो एक एकादशी बहुत समय के बाद में जब आई तब उनको बुखार आया और बहुत बीमार हो गए, चलने को भी नहीं हो रहा था, इतना डिहाइड्रेशन हो गया था उनको। तो उन्होंने जो जाने वाले लोग थे उनके हाथ एक खत भी लिखा, विठोबा को खत लिखा कि मैं बीमार हूँ इसलिए नहीं आ पा रहा हूँ, हो सके तो आप आ जाना। आप बोलेंगे अजीब आदमी है ये, वो कैसे आएंगे? लेकिन भगवान भी एक व्यक्ति है, हमारी प्रिय व्यक्ति है वो। तुम्हें माता पिता तुम्हें वह तुम्हें बंधु सखा तुम्हें वह, गाते हैं सब लोग, लेकिन उसका मतलब क्या है? हे भगवान, आप ही हमारे माता हो, आप हमारे पिता हो, आप भाई हो, बहन हो, सखा हो, मित्र हो, सब आप ही हो। ऐसे क्या कहते हैं, सुहृद यानी जीवलग मित्र, वैसे भगवान है। वो भाव से लिखा उन्होंने कि मैं नहीं आ रहा हूँ अभी इसमें, आप आ सकते हो तो आ जाओ। तो उधर एकादशी की भीड़ लगी हुई थी बहुत, भगवान सबको दर्शन दे रहे, सब प्रेम करते हैं उनके ऊपर। तो उन्होंने बीच में वो अस्वस्थ हो गए, उन्होंने कहा रही, क्योंकि वो भक्त जो आया उसने अपने भगवान के सामने खड़े होकर खत पढ़ा, हे विट्ठल भगवान मैं बीमार हूँ और मैं नहीं आ सकता, हो सके तो आप आ जाना, ऐसे उन्हें पढ़ लिया। भगवान व्यक्ति है, उन्होंने सुना उनके बारे में तो व्याकुल हो गए। रुक्मिणी को बोला चलो मैं चलते हैं अभी, तो बोलते हैं कि अरे इतने लोग आए हुए हैं उनका क्या, वो दुखी हो जाएंगे आप अगर गायब हो जाएंगे यहाँ से, तो ऐसा क्यों नहीं करते आप? आपका जो विमान है ना, विमान गरुड़देव, हम कैसे बोलते हैं, आप नहीं आ सकते, बारिश हो रही है, उनको बोलो ना गाड़ी भेज दो, गाड़ी से भी लेके आएंगे उनको, जैसे मुझे लेके आए ना अभी, वैसे ही आप नहीं जा सकते हो, कोई बात नहीं, आप गाड़ी लेके उनको बुला लो तो भेंट हो जाएगी आपकी। तो बोलते हैं बड़ी बात, सही बात है, तब तक ये दर्शन भी हो जाएगा और ये काम भी हो जाएगा। तो गरुड़ जी वहाँ पहुँचते हैं देव में, जहाँ पर ये बैठे हुए हैं, देख रहे हैं आएंगे क्या विट्ठल देव, तो देखते हैं अरे गरुड़ आ रहे हैं, बोले आएंगे, आ रहे आ रहे आ रहे, बहुत खुश हो जाते हैं, बुखार में फिर भी खुश हो जाते हैं बहुत। गरुड़ जी आते हैं, बोलते अरे गरुड़ तो खाली है, यात्री कोई नहीं उसके ऊपर, पैसेंजर नो पैसेंजर। तो गरुड़ जी कहते हैं कि हम आपको लेने आए हैं, विट्ठल माँ भगवान आपको बुला रहे हैं, क्योंकि कितनी सुंदर लीला है देखो आप, कितनी प्रेम की लीला है, कितना आनंद आता है बताने को और सुनने को। तो उन्होंने कहा कि चलो बैठो, हम आपको तुरंत विट्ठल भगवान के पास ले जाते हैं, आप नहीं आ पा रहे थे ना, हम आपको ले जाएंगे। तो भक्त कितना नम्र होता है देखो, वो कहते हैं कि अरे आपके पीठ पर तो भगवान बैठते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी है समझो, उस सीट में आप कैसे बैठ सकते हो, वो प्राइम मिनिस्टर की सीट है, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं, वैसे आपके पीठ पर भगवान बैठते हैं। मैं कौन हूँ, मैं तो वाणी हूँ, मैं कैसे बैठूँगा आपके पीठ पर, मैं नहीं आ सकता ऐसे, मेरी योग्यता नहीं है बहुत इतनी, नहीं नहीं भगवान की आज्ञा है, नहीं नहीं नहीं, फिर भी मैं आपके पीठ पर कैसे बैठ के आ सकता हूँ, वो तो भगवान का आसन है। दुखी हो गए बेचारे गरुड़ जी, चले गए वापस आके भगवान को बोले, भगवान मैं तो गया था उधर, लेकिन वो बोले कि मैं आपके पीठ पर बैठने योग्य नहीं हूँ तो मैं नहीं आ सकता। तो भगवान और व्याकुल हो गए, अरे मैंने तो मेरे पत्नी का आइडिया सुनकर अच्छा आइडिया किया था, लेकिन वो आए नहीं यहाँ पर। तो तब तक तो एकादशी का दिन समाप्त होने को आया था, सब यात्री वात्री दर्शन करके भीड़ भी कम हो गई थी। तो बोले भगवान अभी बोले कि रुक्मिणी अभी तो चलना ही है। तो रुक्मिणी और विट्ठल भगवान गरुड़ के कंधे पर बैठकर देहू में आए। और तभी ऐसा बुखार की वजह से उनका ऐसा ग्लानी बोलते ना, थोड़ा सा थक जाता आदमी तो थोड़ा सा आँख लग गई उनकी, तो उनको स्वप्न आया। वो स्वप्न में क्या देख रहे हैं, गरुड़ में बैठकर रुक्मिणी द्वारकाधीश विठ्ठल भगवान जो है वो देहों की ओर आ रहे हैं, हवा से आ रहे हैं, और सपने में ये झूम झूम कर नाच रहे हैं, अरे मेरे भगवान आ गए। और वो ऐसे उतर जाते हैं, उतर के गरुड़ से नीचे उतर जाते हैं और फिर वहाँ जाकर देहों में गायब हो जाते हैं, देहों में प्रवेश करते हैं और अदृश्य हो जाते हैं। तब ये तुरंत जग जाते हैं, अरे क्या हो गया। तो अपने मित्रों को बताते हैं कि ऐसा सपना आया मुझे, हो सकता है सच हो सकता है गलत हो, देखना चाहिए फिर भी। लेकिन तो जाके देखते हैं तो देहू के एक जगह पर ये खड़े हैं विट्ठल भगवान रुक्मिणी के साथ। और फिर भगवान तुकाराम से बोलते हैं कि अभी बार बार आने की जरूरत नहीं, अभी मैं यहीं रहने वाला हूँ, मेरे को यहीं दर्शन करोगे आप। इतने दयालु भगवान, देखो अपने भक्त के लिए क्या नहीं करते हैं। तो ऐसे भगवान हैं जिनके साथ में रहना चाहिए हमको, तो हम लोग उनको छोड़कर ऐसे दुनिया में आए हैं जहाँ पर रोज लात खानी पड़ती है, रोज मेहनत करनी पड़ती है, धक्का खाना पड़ता है, मन के विरुद्ध बातें होती है, दुख भोगना पड़ता है। ऐसी जगह पर हम लोग अगर रह रहे हैं किसके किसको छोड़कर, यहाँ पर आनंद ही आनंद है भगवान के धाम में, प्रेम का संबंध है, वो सब छोड़कर हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, आ भी गए हो, गलती से पहुँच गए हो, कोई बात नहीं, अभी मेरा नाम लो और दोबारा आ जाओ लौट के, बस हो गया। अभी बहुत तुमने ट्राई कर लिया मेरे बिना ये करने का और वो करने का प्रयास किया, चलो कोई बात नहीं, सब कुछ माफ़ कर देता हूँ, अभी भगवान का नाम मेरा नाम लो, बाकी कुछ मत करो, मेरे नाम लो बस, खाली नाम के प्रति प्रेम पैदा करो, नाम को लेने की जो क्रिया है उस पर अट्रैक्शन पैदा करो। जैसे हम लोग अभी पिक्चर देखने को बहुत अच्छा लगता है, तो लोग कॉलेज में तो हर दिन पिक्चर देखते हैं, इतना अटैचमेंट है उसके लिए कि रोज़ शाम को पिक्चर देखना ही है, टीवी पे हो या कंप्यूटर में हो या थिएटर में हो मिनी थिएटर में हो, जाना ही है, अटैचमेंट। वैसा अटैचमेंट जो है वो मेरे नाम से बनाओ, कि मेरा नाम लिए बिना आपको रहने जाएंगे, आपके खा नहीं पाएंगे पी नहीं पाएंगे जब तक नाम नहीं लेंगे उसका। बच्चा कैसे होता है, मुझे वो पार्ले जी का एक पूड़ा चाहिए रोज़, तो मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। हमारे बचपन में बहुत बच्चे थे ऐसे, बहुत रोते थे, एक पूरा पैक चाहिए, 90 पैसे का था उस समय, पूरा पैक खा के स्कूल जाएगा। अटैचमेंट, वैसी अटैचमेंट मेरे नाम से बनाओ। जो व्यक्ति उनके नाम से ऐसे अटैच हो गया है, भगवान के नाम से आसक्त हो गया है, भगवान के नाम के बिना उसे चैन नहीं पड़ता है, भगवान उसे दूर नहीं रहते, भगवान उसके पास में रहते हैं, उसके हृदय में रहते हैं, उस पर प्रेम करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, उसकी जिम्मेदारी खुद लेते हैं, योगक्षेमम वहाम्यहम, उसका जो कल्याण है वो खुद संभालते हैं। अरे जो मेरे नाम में इतना आसक्त है उसके लिए भगवान खुद को बेच देते हैं, लेकिन फिर भी हमको उसमें विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, मन कहीं और भटका हुआ है, वो चाहिए ये चाहिए, सब जगह धक्का खा रहे हैं अभी तक, लेकिन फिर भी और भी ट्राई कर रहे हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा, करेले के झाड़ में कहीं ना कहीं आम मिलेगा, इससे खोज कर रहे हैं, पूर्व दिशा में देख के हो गया, दक्षिण में हो गया, नहीं उत्तर में होगा शायद आम, फिर उत्तर में भी हो गया, फिर दक्षिण में होगा, नहीं दक्षिण में भी नहीं मिला, फिर वो ऊपर होगा सबसे टॉप में, उधर भी नहीं मिला, बोले नहीं नीचे जड़ के पास में निकलता होगा। लेकिन सत्य क्या है, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर आग्नेय नैऋत्य वायव्य ईशान्य चारों दिशा में और ऊपर और नीचे 10 दिशा में कहीं भी ढूंढेंगे तो आपको करेले के पेड़ पर आम मिलेगा नहीं। आम का फल चाहिए तो आपको आम के पेड़ के पास जाना होगा, लेकिन हम लोग सब लोग बोलते हैं हमको इधर ही ढूंढना है। जैसे एक बार जोक आया था एक कि किसी की एक टाचनी जो है ना वो जमीन पर गिर गई, तो ढूंढ रहा है उसको, तो लोग बोले इधर क्यों ढूंढ रहे हो, किधर गिरा था, बोले उधर गिरा था, बोले यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो, यहाँ लाइट है ना इसलिए ढूंढ रहा हूँ लाइट यहाँ लगी इसलिए यहाँ ढूंढ रहा हूँ, वहाँ तो अंधेरा, वहाँ पर देखूंगा कैसे मैं ऐसी हमारी अवस्था है, हम लोग हंस रहे हैं लेकिन ये हम लोग खुद की कहानी है हमारी, जहाँ सुख नहीं है वहाँ ढूंढ रहे हैं उसको, क्योंकि लाइट है ना वहाँ पर दिस इज अवर सिचुएशन। नहीं मिलेगा, कितना भी बुद्धिमानी या बदतमीजी या मूर्खता से भी ढूंढेंगे नहीं मिलेगा, जब तक भगवान के चरणों में आश्रय नहीं लेंगे तब तक नहीं मिलेगा। संत लोग बता रहे हैं जो इस दुनिया के नहीं है फिर भी दुनिया में आते हैं, और बता रहे हमको लो भगवान का नाम सबसे बड़ी भेंट, गौलोक के प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। गौलोक का जो सार रूपी धन है, एसेंस है, तत्व है, गौलोक धाम का, भगवान के धाम का प्रेम का धन है, वो नाम के रूप में आपके लिए प्रस्तुत है, ले लो और जाओ भगवान के धाम में, वहाँ पर आनंद करो। कोई जन्म मृत्यु बीमारी बुढ़ापा कोई पीवी दोष में लाइन लगाने की जरूरत नहीं आपको, बीमार हो के बीमार होंगे ही नहीं, आप जन्म ही नहीं होगा, बुढ़ापा नहीं होगा, बीमारी नहीं होगी, ऐसा भी दुनिया है, वहाँ पर चलो ऐसे पुकार रहे भगवान। आप बोलो सच में है क्या वो, प्रूफ दिखाओ उसका। ये ऐसा है कि जो अभी पहली का स्टूडेंट है उसको बोलेंगे आपके मेडिकल कॉलेज भी होता है जहाँ पर 5 साल का कोर्स भी होता है, बट डॉक्टर बनता है आदमी, फिर बाद में मरीजों को देखता है, तो पहली में है, उसको क्या समझ में आएगा मेडिकल किताब, एनाटॉमी, गायनेकोलॉजी और फिजियोलॉजी क्या होता है। उसकी बुद्धि इतनी छोटी सी है, उसको आई कमल बग इतना उसको मालूम है उसके आगे नहीं मालूम है उसको। वो व्यक्ति को बोल रहे हैं कि आपको डॉक्टर बनना है, तो वो लेके पता नहीं क्या होगा, ये क्या होता है चीज़। उस तरह से हमारी अवस्था है, हम बोलेंगे किधर है पहले दिखाओ, तब बोलेंगे वहाँ जाने का तरीका होता है, ये फॉर्म भरना पड़ता है, ये कार्ड लगाना पड़ता है, पेपर लगाने पड़ते हैं, उसके लिए सबमिट करना पड़ता है, उतने इतने मार्क होने पड़ते हैं, फिर उसकी परीक्षा होती है, फिर इंटरव्यू होता है, फिर एडमिशन मिलता है, फिर आपको पढ़ाई करना है, फिर हर साल एग्ज़ाम देना है, फिर एक दिन डॉक्टर बनेंगे। अरे बाप रे, इतनी प्रक्रिया कौन करेगा, रेडीमेड एंट्री नहीं मिलेगा क्या उधर, ऐसा किताब पढ़ के मेरे को डिग्री मिल सकता है क्या। हमको शॉर्टकट चाहिए हर जगह पर। ऐसे कहते हैं कि हम भगवान की दुनिया की जो चीज़ें होती है उसको प्राप्त करने के लिए बहुत सिस्टमेटिक होते हैं हम लोग। समझो आपको साड़ी खरीदनी है तो बराबर 8-10 हज़ार रुपये जेब में लेके जाएंगे, पता है आपको साड़ी की कीमत क्या है, कितने में मिलेगी, हाँ थोड़ा घासा घिस करेंगे तभी, इतना तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन भगवान के लिए कैसा, कुछ दादी ने बोला था, कुछ पिताजी ने बोला था, कुछ टीचर ने बोला था, कुछ मैं सोचता हूँ कि खिचड़ी बनाएंगे और ये मेरा धर्म है, ये मैं ऐसे मैं पालन करता हूँ, मेरी श्रद्धा ऐसे है कि मैं ऐसे करता हूँ, बस मैं तो यही करता हूँ। भगवान के समय हम लोग बहुत अनसिस्टमेटिक हैं और धंधा करने में, पैसा कमाने में, सब चीज़ में, दुनियादारी में बहुत सिस्टमेटिक हैं। लेकिन होना चाहिए भगवान को पाने में सिस्टमेटिक, और प्रपंच जो है होते रहता है अपने कर्म के अनुसार। आप नहीं चाहेंगे तो भी बच्चे होंगे, और नहीं चाहेंगे तो भी आपका जो कर्म है उतना पैसे आएंगे, आपका दुनियादारी का व्यवहार चलते रहेगा, दुनिया रुकती नहीं किसी के लिए। लेकिन भगवान परमार्थ जो है वो करना पड़ता है, उसके लिए प्लानिंग करना पड़ता है, इच्छा करनी पड़ती है, त्याग करने की इच्छा होनी चाहिए, उसकी कीमत चुकाने की तैयारी होनी चाहिए, तब वो प्राप्त होंगे निश्चित रूप से। तब आपको पता चलेगा कि अरे जो कीमत मैंने चुकाई वो तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं थी, जिस जो प्राप्त हो रहा है उसके सामने मुझे वो इतना महान और विशाल है कि मैंने जो भी कुछ किया था, सो कॉल्ड त्याग किया था, वो तो कुछ भी नहीं है, ऐसा आपको लगेगा एक दिन। जैसे अगर 1 करोड़ रुपए आपको ये 3 मंजिल चढ़ने पर प्राप्त होगा तो आपको लगेगा अरे 3 क्या 5 चढ़ूंगा मैं, इतना आसान है वो, उसके बदले में 1 करोड़ रुपए मिलेगा, ऐसा सोचना चाहिए हमको। इतनी कीमती वस्तु अगर थोड़ा प्रयास करने से मिल रही है तो बीमार होने पर भी आपको चढ़ना चाहिए, ये चल रहे हाथ में को तो सहायता करो, मैं भी चढ़ना चाहता हूँ, ऐसा होना चाहिए। जिसको ज्ञान है वो करेगा, जिसको 1 करोड़ रुपया क्या है पता ही नहीं है तो वो क्या करेगा, बोले क्या है नहीं चाहिए, यहाँ पर एक वड़ा पाव खिला दो भूख लग रही है बस हो गया ऐसा ही बोलेगा वो इसको दुर्भाग्य कहते हैं। तो आइए सब लोग हम इस दुर्भाग्य को मिटाएं। भगवान भी, वो विट्ठल भगवान भी द्वारका को छोड़कर उधर पंढरपुर में आके विराजमान हो गए, बाकी सारे भगवान के जितने अवतार हो गए वो आए अपना लीला किया, 100 साल 125 साल जो भी कुछ समय उनका है, भगवान राम कई हजारों साल में थे, लेकिन लीला समाप्त करके फिर दोबारा वापस चले गए वो। लेकिन विट्ठल भगवान जो आए थे अभी भी उधर ही है वो, क्योंकि पुंडलिक ने कहा कि आप जाओ मत, इधर ही खड़े रहो, इतनी दया से आए हो, इतनी कृपा से आए हो, इतनी करुणा से, इतने प्रेम से आए हो, केवल मैं देख रहा हूँ, और जाओगे तो केवल मुझे ही याद रहेगा, दुनिया को कैसे मालूम पड़ेगा कि आप कितने दयालु हो। तो दुनिया को आपको ये दया का रूप जो है, करुणा का रूप जो है, पता होना चाहिए कितनी दया से आप मेरे लिए आए थे, इसलिए आप यहीं खड़े रहो। तो भगवान खड़े हो गए उधर ही, आज भी खड़े हैं। उनकी इच्छा थी कि जो भी दर्शन करने आएगा सबका पाप नष्ट होना चाहिए, उनको भगवान का प्रेम प्राप्त होना चाहिए, और भगवान कितने दयालु है सबको पता होना चाहिए, इस विचार से पुंडलिक ने भगवान से वरदान मांगा था। भगवान बोल रहे वरदान मांगो, मैं आपको वरदान देना चाहता हूँ। तो ऐसी अवस्था में भी उन्होंने खुद के लिए वरदान नहीं मांगा। हम लोग होते तो बोलते टाइम प्लीज़ ज़रा 15 मिनट दो, अच्छी तरह से सोचता हूँ, और ऐसा मौका बार बार कहाँ आता है, ऐसा हम सोचते खुद के बारे में। लेकिन भगवान जब बोल रहे क्या चाहिए बोलो, तो वो दुनिया के लिए एक वरदान मांग रहे हैं, और वो एक वरदान की वजह से आज भी हजारों करोड़ों अरबों खरबों लोग वहाँ पर जाते हैं और अपने पाप शुद्धि करके भगवान का प्रेम प्राप्त करते हैं। अगर पुंडलिक ने वरदान नहीं मांगा होगा तो कौन जाता वहाँ पर एकादशी के दिन दर्शन करने के लिए, कौन निंडी करता, कौन चल के जाता उधर? जो चीज़ को देखना है वो वही ना होती तो हु विल गो देयर? होगा एक पंडरपुर की तरफ भी कोने में कोई जाता है, ट्रेन भी नहीं होती वहाँ पर जाने के लिए। आज इतनी ट्रेन्स और इतनी स्टेशन खोल दिया पंडरपुर नाम का, इतनी बस गाड़ियाँ खोलते एक्स्ट्रा, इतना व्यवस्था करके रखा है। क्यों? क्योंकि जिसको देखना है, जो देखने लायक है वो वहाँ खड़े हैं, बहुत दूर नहीं है, आपके घर के पास पास में भगवान ने अपना अपना अवतार लेकर रखा है। आप गुजराती हो तो उधर द्वारका बना के रखा है भगवान ने, आप राजस्थानी हो तो उधर बहुत सारा करौली जयपुर स्थान बना के रखा है, आप यूपी के हो वृंदावन मथुरा बना के रखा है, आप उत्तरांचल के हो बद्रीनाथ केदारनाथ बना के रखा है आपके लिए, और साउथ इंडियन हो श्रीरंगम, आप कर्नाटक के हो उडुपी कृष्ण, आप आंध्रा के हो गया तिरुपति, जहाँ जहाँ आप जन्म ले सकते हो वहीं सब जगह भगवान ने अपना अपना अवतार लेके अपना स्थान बना के रखा है, ताकि इतने आलसी लोग कहाँ से कहाँ जाएंगे, मैं आता हूँ तुम्हारे पास, और वो आ गए हैं और बोल रहे आ जाओ प्लीज़ कम। एक हमारे मायापुर में एक भगवान की ऐसी मूर्ति है चैतन्य महाप्रभु की, वो ऐसे खड़े हैं, प्लीज़ कम, आप लोग आइए, मैं पुकार रहा हूँ आपको, इंतज़ार कर रहा हूँ, कब आएंगे आप, ये सब छोड़ के जहाँ पर धक्का बुक्की को सब छोड़ के कब आओगे, आ जाओ, बुला रहे हैं भगवान, ऐसे भाव ही उनका ऐसा है, इतने करुणामय भगवान है। तो हमको रिस्पॉन्स देना चाहिए। अरे दुनिया की एक लड़की भी अगर बॉयफ्रेंड ने 10 बार लेटर लिखा लव लेटर, तो 11th 11वीं बार वो हाँ कर देती है उसको, चलो कोई बात नहीं, इतना प्रेम करते हो तो मैं चलो राजी हूँ तुम्हारे लिए। इतनी बार विनती करने के बाद में एक दुनिया की साधारण लड़की भी हाँ बोल देती है बॉयफ्रेंड को, और भगवान जन्म जन्मांतर से बुला रहे आओ मेरे बेटों, आ जाओ मेरे बालकों, आ जाओ, फिर भी हम लोग को टाइम नहीं है। अगर फिर भी हमको टाइम नहीं है तो तड़पना निश्चित है, दुख भोगना निश्चित है, धक्का खाना और मर जाना निश्चित है, और दोबारा आना भी निश्चित है। आना जाना यहाँ निरंतर कोई नहीं परमानेंट, कर लो राम भजन अर्जेंट, सोच लो इसके बारे में, नहीं तो आना जाना मराठी में क्या बोलते हैं येर झारा, निश्चित है वो। लेकिन तुकाराम महाराज बोल रहे हैं कि हे विठोबा हे पांडुरंग भगवान, आपकी वजह से येर झारा संपल्या, आमचा तुमच्यामुळे आमच्या येर झारा संपल्या, जन्म मृत्यूचा येर झारा। इतना तुकाराम भगवान को समझा रहे कि एक व्यक्ति का दर्शन करने से, उनके भजन करने से यहाँ का धक्का खाना हुआ ना, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, जो रोज विरार से चल के जाता है ट्रेन को पकड़ के काम करने के लिए, उसको कहा जाए कि अगली बार आपको या अगले महीने में आपको दोबारा तनख्वाह वाली नौकरी आपके घर के 3 मिनट के पास मिलेगी, तो जाएगा क्या वो चर्चगेट विरार ट्रेन पकड़ने के लिए 8:17 AM के ट्रेन पकड़ने को जाएगा? तो भगवान बोल रहे हैं आपको क्यों धक्का खा रहे हो, फिर भी हम खा रहे हैं, हमको अच्छा लगता है, इसलिए विनती करता हूँ। पंडरपुर की एकादशी बहुत अच्छी तरह संपन्न हुई, भक्ति वेदांत हॉस्पिटल की तरफ से 30,000 मरीजों को इलाज किया गया, उसमें से 5,000 लोगों को भर्ती करके इलाज किया गया, उसमें से 100 लोगों को इमरजेंसी ट्रीटमेंट मिला, 24 आवर्स वार्ड चलाया, 15,000 लोगों को OPD में देखा, 10,000 लोगों को दिंडी में देखा, 2.5 लाख लोगों को प्रसाद खिलाया एकादशी के दिन, दशमी के दिन, एकादशी के द्वादशी के दिन, और रोज़ हरिनाम संकीर्तन करते हुए लोग पंडरपुर के भगवान के मंदिर को प्रदक्षिणा करके आते थे, रिंगण में पुस्तक वितरण किया भगवद गीता, प्रयास किया जितना भी लोगों को भगवान के साथ जोड़ने का, सेवा करने का प्रयास किया। तो ये हमारा भाग्य है कि भगवान हमको बुलाते हैं, सेवा देते हैं, यही जीवन है। और आपको क्या बताऊँ, बॉम्बे में आएंगे आप, स्टेशन पर जाओगे इतने लोगों के चेहरे लटके हुए हैं, सब दुखी है, परेशान है, ट्रेन की राह देख रहे हैं, 9:17 हो गए अभी तक गाड़ी क्यों नहीं आई, 9:05 की गाड़ी लेट क्यों हो रही है, इधर बारिश भी हो रही है, इतनी भीड़ है, सब लोग दुखी और परेशान और चिंतित और टेंशन में है। अब पंडरपुर जाइए आप, सब लोग खुश, वेरी रेयर। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे इसके बारे में, कितना लोग, हर एक आदमी खुशी में। अरे 48 घंटा लाइन में खड़ा रहने के बाद, 18 दिन चल के आने के बाद, 48 घंटा लाइन में खड़ा होने के बाद में उसको एक सेकंड का दर्शन मिलता है, वो रोते हुए, मतलब खुशी से रोते हुए बाहर आता है कि हो गया मेरा हो गया। तो कैसे बोल सकते कि वो पत्थर है और पागल लोग रो रहे हैं? सब लोग तो बड़े पागल सोचते हैं, इतने लाखों लोग पागल कैसे हो सकते हैं? खुशी से पूरे नहीं समा रहे, इतना आनंद हो रहा है उनको कि आज अजी मैं ब्रह्म को देखा, भगवान को देखा, आज परम ब्रह्म का दर्शन किया मैंने, के चरणों का स्पर्श किया मैंने आज। फिर तो आप उनको केला दे रहे हैं, खिचड़ी बांट रहे हैं, बोले नहीं चाहिए बाद में खाएंगे, अभी तो बहुत खुशी हो रही है कि भगवान को दर्शन किया हमने। ऐसे खुशी के वातावरण में भी जाना चाहिए कभी। जीवन भर हम दुख के वातावरण में रहते हैं, सब पड़ोसी झगड़ा कर रहे हैं, सोसाइटी में झगड़ा हो रहा है, ट्रेन में झगड़े हो रहे हैं, बिल्डिंग में झगड़े हो रहे हैं, सब जगह लोग परेशान हैं, आप ये द्वेष कर रहे हैं आपसे, ये झगड़ा कर रहे हैं आपसे, दिमाग ऐसा पक जाता है पूरा। और धाम में चले जाओ उत्सव के दिन, सब लोग ऐसे प्रेमी लोग आते हैं, गले मिलते हैं लोगों को। पंडरपुर का महात्म्य ऐसा है कि भक्तों से गले मिलने से सारी चिंताएं खत्म हो जाती है, ऐसा वरदान है पंडरपुर का, इसलिए वहां के लोग बार बार गले मिलते रहते हैं, चरण छूते हैं और गले मिलते हैं। जगन्नाथपुरी जाएंगे आप रथ यात्रा के समय, 20-20 लाख लोग इकट्ठा होते हैं और सब लोग इतने आनंद में रहते हैं जगन्नाथ रथ खींचते समय। ये भी अनुभव करने की चीज़ है कि जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले, ऐसी भी कोई जगह है क्या? आइए दर्शन कीजिए, पता कीजिए, यही भगवान के भक्ति का आनंद है। चाहे नौकरी करो नहीं करो, घर संभालो, कुछ भी करो, भगवान के भक्ति का आनंद जरूर लो, आपका अधिकार है वो, आप उसके हकदार हो, भगवान ने आपके लिए बनाया फॉर्मूला, फिर भी हम लेना नहीं चाहते, तो ले लो उसको, अपने भाग्य को बनाओ और बिगड़ी हुई जिंदगी को सुधारो, संवारो और खुश हो जाओ, आनंद से जिंदगी जियो। जब तक भगवान ने जिंदगी दिया है, खुशी से जियो, आनंद से जियो, प्रेम से जियो, दूसरों को भी प्रेम दो। आपुल्या सारे के कड़ावे सकल जन, जो जो जे जे ठावे इतरा ना द्यावे, तुकारा महाराज बोलते हैं, खुद को मिलाए दूसरों को दो, खुद खुश रहो दूसरों को खुश बनाओ, सब जगह खुशियां फैलाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग पुकारो एक बार, हरे कृष्णा, अरे बोला बोला, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्ण।